गलती को रेक्टिफाई करो। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे इल्जाम लगा रहा है जिसमें आपके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं आती, तो फिर अपने दिल को अल्लाह के साथ जोड़ लीजिए। इज्जत अल्लाह के हाथ में है, लोगों के जुमले आपकी इज्जत की कमी नहीं कर सकते। यही चीज यहां सिखाई गई है। और मोमिन कैसा होता है, इसी शख्स की कहानी से आपको पता चल रहा है कि मुशरिक को भी हमदर्दी से डील कर रहा था, जालिम को भी, वो जालिम जो कि रसूलों के साथ बदतमीजी कर रहे थे उनको भी इज्जत से डील कर रहा था, या कौमी कह के। सो दोनों एंगल समझिए, लोग आपकी इज्जत ना करें दीन पर अमल करने की वजह से, तब भी आपने डिसहार्टन नहीं होना। आपके फ्रेंड सर्कल्स बाज़ औक़ात छूट जाते हैं, और इंसान के बड़े बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए कि उन्होंने आपसे मिलना मिलाना कम कर दिया, उन्होंने आपको इनवाइट करना कम कर दिया, इसलिए कि अब बहुत से ओकेजन्स जो उनके होते थे उसमें आपने जाना कम कर दिया था। तो उसमें आपका दिल छोटा होने की जरूरत नहीं है। याद रखें, कहीं से टूटेंगे तो कहीं जुड़ेंगे भी, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह वैक्यूम नहीं छोड़ता है। और ये साइंस भी आपको बता चुकी है कि कहीं जगह पर भी वैक्यूम नहीं रहता है, जहां वैक्यूम होता है वो जगह वहां कोई कोई ना कोई दूसरी चीज उसको फिल कर लेती है। जब रब की खातिर नाफरमानियों की महफिलों को छोड़ेंगे, जब रब की खातिर गुनाह के कामों को छोड़ेंगे, तो नेकियां तो फिल करेंगी, नेक लोगों की दोस्तियां तो उस जगह पर जरूर आएंगी। तो आपने अपने आप को लोगों के तानों की वजह से डिसहार्टन नहीं करना, एक। दूसरा, आपने किसी इंसान की इज्जत में कमी नहीं करनी, बहुत जरूरी है। वरना जब हम ये सुनते रहते हैं ना कि मैं अल्लाह के रास्ते पर अमल कर रही हूं, मैं अल्लाह की खातिर कुर्बानी दे रही हूं, कोई बात नहीं, लोग मुझे बुरे बुरे टाइटल देते हैं, मैं तो अल्लाह के साथ अटैच रहूंगी, शैतान यहां भी आता है। याद रखें, आलिम का शैतान भी आलिम होता है, ये कहा जाता है। जो जिस लेवल के ईमान का होता है उसका शैतान भी उसी लेवल का होता है। वो कहेगा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें बिल्कुल इनकी लोगों की टाइटल्स की परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही कीड़े मकोड़े, बेकार से लोग, जहन्नमी, एट द एंड ऑफ द डे हबा अम मंसूरा, अल्लाह इनको डस्ट बना के उड़ा देगा। शैतान आपके अंदर ये ख्याल लेकर आएगा। फौरन अपना बैलेंस मेंटेन कीजिए, जहां लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मुझे लोगों की नजरों में अपनी इज्जत तलाश नहीं करनी, वहीं पर मुझे लोगों की इज्जत करनी है। वला कद करमना बनी आदम, अल्लाह ने हर इंसान को इज्जत दी है, अल्लाह ने हर इंसान को ऑनर किया। अल्लाह ने यह नहीं कहा वलाकद करमना बनी मुस्लिमीन, ये कहा है अल्लाह ने मुसलमान के बेटों को, मुसलमान की औलादों को इज्जत दी है, अल्लाह ने बनी आदम को इज्जत दी है। तो लोगों का इकराम कीजिए, लोगों की इज्जत कीजिए। मुसलमान लोगों के साथ बेअदब नहीं होता, हक बात कहता है, हक बात में कहीं डाइल्यूट नहीं करता है, हक बात कहता है, जिम्मेदारी अदा करता है, हक पर जम जाता है, चाहे सारा खानदान एक तरफ हो और वो सब रब की नाफरमानी पर हो, मोमिन उनका साथ नहीं देता, मगर बेअदब नहीं होता, रिस्पेक्ट के साथ मामला करता है, अदब के साथ मामला करता है। आपका और मेरा ताल्लुक उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है जिन्होंने जब एक मरतबा एक यहूदी का जनाजा आते हुए देखा तो आप खड़े हो गए थे तकरीम में, इज्जत में। ये आपकी और मेरी जो चीजें हैं अमल में वापस लाने की, ये वो चीजें हैं जिसकी आज जरूरत है, इस तकरीम की आज मुसलमानों को जरूरत है। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर मुसलमान इंसानों की इज्जत ना करें तो उन्होंने अल्लाह की नेमत का कुफर किया। किस नेमत का? कि अल्लाह ने उनको इंसान बनाया था और इंसान एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आपने कुरान में पढ़ा है, सूरत आले इमरान में आता है, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मुत्तकी लोगों की सिफात आती हैं वहां पे चार, उसमें से एक सिफत आती है अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिन तकवा वाले कैसे होते हैं जो दूसरे मोमिनीन के साथ नरम होते हैं। अज़िल्ला जलील की जमा है, हम उर्दू में जिस मीनिंग में जलील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अरबी में बिल्कुल मुख्तलिफ है, कम्प्लीटली डिफरेंट। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन का मतलब ये नहीं है कि वो मोमिनों के साथ जो हैं वो जलील होते हैं, और जलील हमारे यहाँ नेगेटिव कॉनोटेशन में उर्दू में इस्तेमाल होता है। अरबी में बहुत ही प्यारा मफहूम होता है अज़िल्ला का, ये होता है सामने वाले के लिए अपनी अना को बिलो जीरो लेवल ले जाना, सामने वाले के लिए आपका अपने तकब्बुर को बिल्कुल फ्लैट कर देना। एक आपके अंदर एक अल्लाह ने नेचुरल नेचुरल सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ईगो लेवल रखा है, वो अपनी जगह मेंटेन्ड है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो ईगो सेंट्रिक होने का जो इशू है जिसने इंसानों को सेल्फ सेंटर्ड बना दिया है, कोई मुझे बुरा भला कह के जाएगा कहां पे, ये वाली चीज ये मोमिनीन में नहीं होती है। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनीन के साथ मुसलमान जो हैं हमदर्दी खुलूस और मोहब्बत वाले होते हैं, अपने आप को कंप्लीट हम्बल रखने वाले। और ख़वातीन बैठी हैं तो बीवी और शौहर के रिलेशनशिप में, जितना बीवी अपने आप को शौहर के सामने हम्बल रखेगी, हम ये बात कर रहे हैं जनरली अच्छे शौहरों की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे शौहर होते हैं, हम एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली अगर आप अच्छे शौहरों को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन घरों से होपफुली आप और मैं आ रहे हैं, अच्छे शौहर हैं जब भी यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत ही अच्छे शौहर हैं जिसलिए सैटरडे और संडे को भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी दोपहर के टाइम पर। इट्स नॉट ईजी, चाहे शौहर का रोजा भी हो, शौहर का क्या होता है, रोजे से कोई ताल्लुक नहीं होता, शौहरों का एक फिलोसफी होती है, जब वो घर पे हो तो बीवी बाहर नहीं हो सकती। दिस इज अ टिपिकल ईस्टर्न शौहर, टिपिकल। लेकिन अब वो ईस्टर्न शौहर काफी बदल गए हैं, इसलिए कि सारे ईस्टर्न शौहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके, और हम जो जितना घूमते फिरते हैं सारी दुनिया में, लेकिन अल्लाह उनको उसका अजर दे अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी जो हैं वो कोई अपनी हैंग आउट करने के लिए दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं रहे होते, अब में से अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर लोग काम से या दीन के लिए निकलते हैं। मगर बात क्या है कि बीवी होते हुए आपके लिए ये क्वालिटी अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, अपने शौहर के सामने आप इतनी हम्बल रहें कि आपको शौहर के सामने कोई ईगो ना आए, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, आसान है? बहुत मुश्किल है। शैतान तो सबसे पहले आपको जितना ईगो पंप कराएगा वो शौहर के सामने करवाएगा। इनको देखो हर वक्त ऐसी बातें करते रहते हैं, ये जुबान से नहीं बोलती बीवी, कहां बोलती है, दिल में बोलती है। इनको देखो हर वक्त मुझे ही टोकते रहते हैं, गुस्सा खुद इतना आता है, ये सब दिल में ही सारी गर्दाने हम पड़ रहे होते हैं। रोक लें अपने आप को, थाम लें अपनी जुबानों को, एक दिल की जुबान होती है और एक आपकी, एक अल्लाह ताला ने फिजिकल जुबान दी है, रोकें। इज्जत करेंगी इज्जत मिलेगी, और ये सब पर उसूल अप्लाई करें, खानदानों पर, मैके वालों पर, अपने ससुराल वालों पर। तो अल्लाह ताला ने इस रजुल को इज्जत दी, जन्नत में मुकाम दिया, और जन्नत में मुकाम देने के बाद ये नहीं मतलब था कि अल्लाह ताला अब इसको तो जन्नत में पहुंचा दिया नेक बंदे को, अब अल्लाह पीछे दुनिया से गाफिल हो जाए, ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला ने पीछे दुनिया का रुख किया जमीन की तरफ। अब आगे आयत नंबर 28 में करिया वालों का जो आगे का मामला है वो बयान किया जा रहा है। फरमाया वमा अनजलना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुन्दिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनजिलीन, और उस कौम के लिए हमने आसमान से कोई फौज नाजिल ना की। कोई जुन्दिन लश्कर के लिए आता है, हमने आसमान से उस कौम के ऊपर उसके बाद कोई लश्कर नहीं उतारा। मिम बादी ही में ही जो है ये रजुल की तरफ जा रहा है, यानी रजुल उस माशरे से चला गया। अब जब रजुल चला गया, इट वॉज ऑटोमेटिक कि रसूल भी फिर वहां से चले गए थे। जब रसूल चले जाते हैं फिर बस्तियों पर अजाब आया करते हैं। सो दिस इज कंसर्न्ड ऑटोमेटिक नोशन, इट्स अंडरस्टूड नोशन कि रसूल भी यहां से चले गए, उनको हुक्म दिया गया, अल्लाह की तरफ से वही आई कि आप इलाका छोड़ दें, और इस कत्ल के बाद, लेकिन अल्लाह ने रसूलों का जाना मेंशन नहीं किया। आप देखें इस कहानी में, आयत में अल्लाह ने प्रोमिनेंट पोजीशन किसको दिया है, मिन बादी ही, ये ही कन्फर्म उस रजुल की तरफ जा रहा है, इसलिए कि ही जो है वो प्रोनाउन है सिंगुलर का, और रसूल एक तो नहीं था, रसूल कितने थे, तीन थे। तो अगर रसूलों के जाने की बात होती, वमा अनजलना अला कौमी ही मिम बादी ही, अला कौमी हिम मिम बादी हिम आता कि उनकी कौम के ऊपर उन सब के बाद, अल्लाह ने रसूलों को इस वक्त पिक्चर में लिया ही नहीं, अल्लाह ने इकराम किया एक आम मोमिन का उसकी कुर्बानी की वजह से। और ये सारा वाकया, ये कहानी असल में सपोर्ट बन रहा था रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हर एक सहाबी की जो कि इस वक्त सख्ती में ईमान पर जमने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया हमने उस कौम के ऊपर, उसकी कौम के ऊपर उसके बाद कोई लश्कर नाजिल नहीं किया आसमान से, वमा कुन ना मुनजिलीन, और ना ही हम नाजिल करने वाले थे। ये कहकर अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत तो बताई दी कि अल्लाह ने उस कौम पर फिर जो सजा भेजी वो किसी दुनियावी लश्कर के थ्रू नहीं भेजी, किसी दुनियावी फौज के थ्रू नहीं भेजी। लेकिन यहां तीसरी ऑडियंस सहाबा और मोमिनीन के अलावा कौन थी कुरान सुनने वाली, कुरैश। कुरैश को बता दिया गया कि तुम्हें पिछली आयात में तुम्हारा जो है वो इनसिग्निफिकेंट होना तो अल्लाह ने वाजे कर ही दिया था कि तुम्हारे आसपास तो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है, तुमसे नीचे तो पॉलिटिक्स में भी कोई नहीं, तुमसे नीचे इकोनॉमिक्स में कोई नहीं, तुमसे नीचे फाइनेंस में कोई नहीं, तो तुम तो सबसे ज्यादा एक बेकार सी कौम हो। वो अल्लाह ने पीछे कुरैश को इनसिग्निफिकेंट कर दिया था। यहां अल्लाह ताला ने कुरैश को एक और चीज इस कहानी के जरिए बताई। कुरैश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे, जब आप उनको कुरान सुनाते थे, कि अच्छा एक काम करो मोहम्मद, तुम हमारे ऊपर वो सजा ले आओ जिसका तुम बार बार जिक्र करते हो। ऐसा करो, तुम ये बताओ कौन सी फौज आकर हम पर हमला करेगी, हमारी हमारे नेबर में से पर्शियन एम्पायर आएगी या रोमन एम्पायर आएगी या एबिसिनियन एम्पायर में से लोग आएंगे, कौन सा लश्कर आएगा जो हम पर हमला करेगा। अच्छा चलो लश्कर नहीं आएगा, ये इंसोलेंस थी इनकी जो आपको सीरत में मिलती है। अच्छा लश्कर नहीं आएगा तो ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी फौज है, तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं, कितने फॉलोअर्स के साथ हम पर हमला करोगे। अच्छा फॉलोअर्स तुम्हारे जो हैं वो इनविजिबल हैं। ओ अच्छा, तुम्हारे वो फरिश्ते होंगे जो तुम्हारी फौज होंगे, जो तुम जिस जो तुम्हारा क्लेम है कि तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत यासीन नाजिल होने से पहले इनको वो आयात बता चुके थे जिसमें अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि सलाम के मुकाम को वाज़े किया था। और जिब्राइल अलैहि सलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में दो ही मुकामात पर उनकी असली शक्ल में देखा था। सूरह नजम में ये बात बयान की गई है जिसको कुरैश सुन चुके थे। वो फरिश्ता जो क्लेम करते हैं मोहम्मद के मेरे पास वही लेकर आता है, उसी के लिए मोहम्मद ने कहा था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलाकद रआहु बिल उफुकिल मुबीन, हमने उसको पूरे होराइजन पर देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से उतर रहे थे, जब आप पर वही का नुजूल हुआ है, तो आपने जिब्राइल अलैहि सलाम को देखा, और जिब्राइल अलैहि सलाम को जो आपने अपनी हदीस में बयान किया है, आप अरब एक मुहावरा इस्तेमाल करते थे कि आपके 600 पर थे और आप पूरे होराइजन पर छाए हुए थे। तो जब कुरैश ने भी ये आयत सुनी तो कुरैश ने यही ताना दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अच्छा तो आसमान से जिब्राइल आएंगे हम पर अजाब लेकर, तो तुम उनको ले आओ, उनको बुला लो। इस आयत के जरिए मुफस्सरीन कहते हैं कि कुरैश को भी वाजे कर दिया गया कि तुम जिस अजाब का जिक्र करते हो मोहम्मद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस लश्कर को बुलाने की बात करते हो, अल्लाह की नजर में तुम इतने इनसिग्निफिकेंट हो कि तुम्हें खत्म करने के लिए अल्लाह को फरिश्ता भेजने की भी जरूरत नहीं है। बास कौमों पर अजाब आया है जिब्रील अलैहि सलाम के जरिए, उनमें से एक प्रोमिनेंट कौम हजरत लूत अलैहि सलाम की कौम थी। लूत अलैहि सलाम की कौम पर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजा गया था, और उन्होंने हदीस में आता है फ्रॉम द टिप ऑफ द विंग, पूरे पर से भी नहीं अपने, फ्रॉम द टिप ऑफ द विंग उन्होंने बस्ती उलट दी, सिर्फ उनके एक पर के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उनके 600 पर थे, एक पर के एक टिप से पूरी बस्ती को कौमे लूत की उलट दिया गया। ये मामला था। तो जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए अजाब आए हैं। कल मैंने आपको एक हदीस का मफहूम बताया था कि बस्ती के ऊपर अजाब शुरू किया गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्राइल अलैहि सलाम को हुक्म दिया गया था उस शख्स के घर से अजाब शुरू करो जो अल्लाह की नाफरमानी होते हुए देखता था और उसके चेहरे का रंग नहीं बदलता था। तो जिब्राइल अलैहि सलाम आया करते थे बस्तियों पर अजाब देने के लिए, लेकिन इस मुकाम पर स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ने वाजे कर दिया कुरैश को भी और इस रजुल की करिया की कौम को भी कि ये इतने इनसिग्निफिकेंट लोग हैं कि अल्लाह ताला को इनके लिए, इनको तबाह करने के लिए अपने फरिश्ते भेजने की भी जरूरत नहीं, ये इतने वर्थ भी नहीं है कि अल्लाह अपने जलीलुल कदर फरिश्ते जो है इनको तबाह करने के लिए भेजे। फिर हम जानते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने उसके बाद कोई लश्कर नहीं भेजा, अल्लाह का ये उसूल नहीं होता था कि अल्लाह कौम को बता दे कि अल्लाह उस कौम को किस तरह खत्म करेगा। कौमें खत्म हुई, सजाओं के बारे में कहा जाता था कि अगर तुमने नहीं माना तो वार्निंग है, सजा आएगी, अजाब आएगा, लेकिन अजाब कब आएगा और किस तरह आएगा ये नहीं बताया जाता था। कयामत का हर रसूल से पूछा गया और हर रसूल का एक ही जवाब होता था, इन्नमा अना मुंदिर, देखो बात तो सिर्फ ये है मैं तो खबरदार करने वाला हूँ, कयामत का मुझे भी नहीं बताया गया कि कब आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को कयामत का एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया था कि वो कब आएगी। तो यहाँ तमाम अंबिया के एंगल से बात बता दी गई कि अल्लाह ताला ने उस कौम के ऊपर उसके बाद जो कोई लश्कर नहीं भेजा, तो अजाब कैसे आया, अचानक से। آیت نمبر 29 میں آیا, ان کانت الا صیحتا واحدہ فاذا ہم خامدون, پھر وہ کچھ بھی نہ تھی سوائے ایک بہت ہیوج ایکسپلوسیو ساؤنڈ. یہ جو یہاں پہ لفظ آیا ہے صیحہ, یہ بہت بڑا بلاسٹ ایکسپلوسیو ساؤنڈ کے لیے آتا ہے. ایک آواز ہوتی ہے نا جو بہت زور سے آتی ہے, اس کے بعد آپ کے کانوں میں صرف ٹنگ آواز آنے شروع ہو جاتی ہے, صیحہ ایسی آواز کو عربی زبان میں کہتے ہیں. بہت لارج بلاسٹ, لارج ایکسپلوسیو ساؤنڈ, اتنی ہیوج ساؤنڈ آئے گی, کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, تو بس اچانک سے وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو جائیں گے. اب آواز آئے گی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو جائیں گے, کس طرح کا عذاب تھا آیات واضح نہیں کرتے. واللہ عالم, کیا کوئی زلزلہ تھا جس سے پوری بستی ختم ہو گئی, کیا کوئی طوفان تھا جس سے پوری بستی ختم ہو گئی, کیا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایک ایکسپلوسیو ساؤنڈ تھی اور اس کے بعد فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, بس وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح رہ گئے. صیحہ وائلنٹ آواز کے لیے آتا ہے. آپ دیکھیں, آپ کو میں نے یہ جملہ شاید بتایا تھا نا کہ لا جو ہوتا ہے, انسانوں نے جو قانون بنایا اس میں اصول ہوتا ہے, پنشمنٹ شوڈ سوٹ دا کرائم, سزا وہ دینی چاہیے جو کہ کرائم سے سوٹ کرے. یہ قریہ والے وہ لوگ تھے جن کے پاس دعوت دینے والا ایک رسول نہیں تھا, اللہ کی تعلیم سنانے والا ایک رسول نہیں تھا, تین تین رسول تھے, اور پھر ایک فالوور بھی تھا بڑا کنوکشن والا جو زوردار سپیچ کرتا تھا, زوردار دعوت دیتا تھا. جن کانوں نے قرآن کی بات, اللہ کی دی ہوئی وحی کی بات, رسولوں کی بات سننا گوارا نہیں کیا, اللہ نے ان کو انہی کانوں کے ذریعے عذاب دیا, انہی کانوں نے ایکسپلوسیو ساؤنڈ کو ایکسپیرینس کیا, اور اسی کے بعد جو تھا ان کی موت کا معاملہ آ گیا. صیحہ صوتن شدید کو بھی کہتے ہیں. صوتن شدید یعنی کیسی آواز ہوگی, اس میں جو آپ کو آخر میں تا نظر آ رہی ہے اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں. صیحتن, اس کو جو آخر میں آپ کو دو نقطوں والی تا نظر آ رہی ہے اس کو تا کہتے ہیں, تا مربوطہ. یہ تا مربوطہ وحدت کی ہے, یعنی تا مرہ کہتے ہیں اس کو. ایک چیز کے لیے ایک آواز کافی تھی. آپ دیکھیں صیحتن کے اندر آلریڈی ایک آواز کا کانسیپٹ ہے, لیکن آگے اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ واحدتن, مزید توکید کے لیے, مزید ایمفسس کے لیے, کہ اس کے بعد اتنی لارج ایکسپلوسیو ساؤنڈ تھی کہ اس کے بعد کسی اور آواز کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی, ختم ہو کے رہ گئے, بجھ کے رہ گئے, گناہ گار تھے, اللہ نے فوراً ختم کر دیا. فا اذا ہم, یہ فا جب بھی قرآن میں آئے گا, آپ جب بھی تلاوت کریں اور یہ فا آئے, اس کو کہتے ہیں مفاجعہ, کسی کام کا انسٹنٹینیسلی ہو جانا. جیسے اللہ کہتا ہے کن, ہو جا, تو کیا آتا ہے؟ فا یکون, تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. فا میں کسی کام کے فوراً ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. آپ آیات پڑھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہیومن ایمبریولوجی کو بیان کیا ہے, خوبصورتی نظر آئے گی آپ کو وہاں پر. وہاں فا نہیں آتا, ثم آتا ہے. ثم میں ڈیلے ہوتا ہے, انسان ایک سٹیج پہ نطفہ ہوتا ہے, پھر وقت گزرتا ہے, پھر انسان مدغہ بنتا ہے, پھر علقہ بنتا ہے, پھر وقت گزرتا ہے انسان مدغہ بنتا ہے, پھر وقت گزرتا ہے انسان ایک اور شیپ اختیار کر لیتا ہے. وہاں آتا ہے ثم, پھر. یہاں فا آیا, ہم اردو میں ترجمہ پھر ہی کرتے ہیں, لیکن عربی زبان میں فا کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا فوراً ہو جانا, انسٹنٹینیسلی ہو جانا. اللہ نے کہا فوراً وہ کیا ہو گئے؟ خامدون, بجھی ہوئی آگ کی طرح. عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے خمود, خواہ پر پیش, خمود. خمود کہتے ہیں کہ جیسے راکھ ہو کہیں پر, کوئلے ہوں, اور آپ کوئلوں کے اوپر پانی ڈال دیں. دیکھیں کوئلوں کو دو طرح بجھایا جا سکتا ہے. ایک, آپ باربیکیو کرتی ہیں تو آپ اپنی اس کول ٹرے میں سے کوئلے کو باہر نکال کے اس کو پاؤں سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا, پاؤں سے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ پاؤں سے یا کسی چیز سے اس کو پریس کرتی ہیں تو اس میں کبھی کبھی اورنج پارٹیکلز رہ جاتے ہیں. جب عربی زبان میں آپ کے کول, جلتے ہوئے کول میں اورنج پارٹیکل رہ جائیں گے, اس کو حمود کہتے ہیں, ہاں سے حمود, بغیر نقطے والی. وہ حمود ہوگی, ہاں پر پیش اور بغیر نقطے والی, جب اورنج پارٹیکل رہ جائیں گے. جب بالکل اورنج پارٹیکل نہیں رہتے, آپ اس کوئلے کے اوپر بالکل پانی ڈال دیتے ہیں, آپ ایک دم سے پانی ڈالتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئلہ بالکل آواز کے بعد فلیٹ ہو جاتا ہے. اس چیز کو خمود کہتے ہیں, خواہ پر پیش اور نقطے والی خواہ. تو اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ کوئی آواز بھی نہیں آئی, بس خاموشی سے اس اتنی بڑی آواز کے بعد یہ بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہو گئے, پرائز لیس, بیکار, کوئی ویلیو نہیں ان کی. جو سارا تکبر تھا وہ ان کا ایک طرف بالکل ختم ہو گیا, بالکل جیسے کینڈل کے اوپر آپ پانی ڈال دیں تو ایک دم سے بجھ جاتے ہیں. ان کا بھی یہی حال آ ہوا, ایک ہی آواز نے ان کو بجھا کر رکھ دیا. تو قریش کو بھی کہہ دیا گیا, قریش کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی میں بہت زیادہ دعوے کرنے والے سیکنڈز کے اندر بجھ جاتے ہیں. سوچ سمجھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو. آپ دیکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کو, ان قریہ والوں کو آگ سے ریزیمبل کیوں کیا گیا کہ وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے. آگ سے ریزیمبل کرنے کا ایک اس میں اینگل یہ ہے, اللہ نے نافرمانوں کو آگ سے ریزیمبل کیا ہے, اس لیے کہ آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے نا. اللہ کی نافرمانی بھی ایسے ہی کنٹیجیس ہوتی ہے, بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں ایک بھی گناہ ہے, یاد رکھیں وہ آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گا, بہت تیزی سے پھیلے گا. نہ صرف وہ بہت تیزی سے دوسروں تک پھیلے گا, بلکہ آگ کا ایک اور معاملہ ہوتا ہے, آگ جس چیز پر لگی ہوتی ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے نا, اور پھر پھیلتی ہے. سو اگر آپ کے اندر ایک بھی گناہ ہے, پہلے وہ گناہ کی آگ آپ کو لپیٹ میں لے گی. آپ کی زندگی میں ایک گناہ پرسسٹنٹ کے ساتھ ایک گناہ نہیں رہتا, وہ اپنے ساتھ گناہوں کے خاندان لے کر آتا ہے. اور جب آپ کا گناہوں کا خاندان آس پاس کے لوگوں پر امپیکٹ کرتا ہے تو آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو اللہ نے نافرمانوں کو یہاں پر آگ سے ریزمبل کیا ہے. اور اللہ نے کیوں اس قوم کو ختم کر دیا کہ وہ خامدون رہ گئے؟ رسولوں کی نافرمانی, گناہ ایز اے لائف سٹائل, اور مومن کا قتل. یہ تین ان کے جرم تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو کمپلیٹلی صفائے ہستی سے مٹا دیا. اللہ کی نافرمانی, یا اللہ یا اللہ کے رسولوں کی نافرمانی, گناہوں میں پرسسٹنٹ ہونا, گناہ ایز اے لائف سٹائل اپنانا, اور تیسرا مومن کا قتل کر دینا. تو اللہ نے جن کو کیسے ختم کیا؟ اللہ نے کوئی لمبا چوڑا لشکر نہیں بھیجا. اور یاد رکھیں اللہ کو اپنے بندوں کو تباہ کرنے کے لیے لمبے چوڑے لشکر اور فوجیں نہیں ہر دفعہ بھیجنے ہوتے. اللہ انہی چیزوں کو, جن چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے, اللہ انہی کو چھوڑ دیتا ہے. چھوڑ دیتے کا مطلب میں کیوں کہہ رہی ہوں, آپ قرآن میں پڑھتی ہیں, سورۃ مرسلات میں آتا ہے, والعاصفات عصفا, تیزی سے چلنے والے ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے. یہ جو ہوا ہے, اس ہوا کے لیے کہتے ہیں, یہ عصفا اصل میں عربی زبان میں جو تیز آندھی کے لیے آیا ہے, والعاصفات عصفا, عربی زبان میں عاصفا کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو, گھوڑے کی گردن پر بال ہوتے ہیں نا, سو جب رائڈر گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کو کس چیز سے کنٹرول کرتا ہے؟ رائڈر کے پاس اس کی لگام ہوتی ہے نا, اس رسی ہوتی ہے اس کی, تو جب گھوڑے کو روکنا ہے تو وہ رسی کھینچتا ہے. بعض جنگلی گھوڑے ہوتے ہیں, اگر کوئی جنگلی گھوڑے کو, وائلڈ گھوڑے کو ٹیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پہ تو رسی نہیں ہے, تو اس پر بیٹھ گیا, اب وہ اس کو کیسے ٹیم کرتے ہیں؟ وہ اس کی گردن کے بالوں کو پکڑتے ہیں. عاصفہ ایسی ہوا ہے, یہ جو اس وقت آپ کو اور مجھے ہلکی ہلکی چلتی بھی محسوس ہو رہی ہے, جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے, جو نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جب آپ صبح صبح فجر کے بعد باہر واک کرتی ہیں تو جو آپ کے چہرے پر ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے, اللہ چاہتا ہے جب یہ ہوا چہرے پر محسوس ہو تو اس کو عاصفہ کی کیٹیگری میں بھی ذرا تھوڑا سا کنسیڈر کر لو. عاصفہ وہ جنگلی گھوڑا جس کی لگام کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا ہوا ہے. سو یہ ہوا وہ میڈیم ہے جس کو اللہ نے اس وقت اس کی لگام سے کھینچا ہوا ہے. جب یہ اتنی سودنگ فیل ہوتی ہے, جب آپ بیچ پہ جاتی ہیں اور آپ کو ہوا لگتی ہے اور آپ کا دوپٹہ لہراتا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. ہیروئن کے دوپٹے لہراتے تھے تو ہمارے ماڈلز کے لانس کے شارٹس کے جو شوٹس ہو رہے ہوتی ہیں اس میں جب دوپٹے لہراتے ہیں تو وہ فیشن بن جاتا ہے نا. اللہ چاہے اس ہوا کی لگام کو چھوڑ دے, اور جب اللہ ہوا کی لگام کو چھوڑتا ہے تو اس کے راستے میں جو چیز آتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے عاصفہ والی ہوا, آندھی والی ہوا جس کی لگام چھوڑ دی جائے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اپنے بندوں کو اللہ نے یہاں نشانی بتائی कि जो खत्म हुए वो तो खत्म हो जाते हैं एक हल्की सी अल्लाह की लगाम छोड़ने से, और जो जिंदा हैं, जो आबिद से अब्द बनना चाहते हैं, वो अपनी इसी आसपास की चीजों से, कायनात से सबक लें, और याद रखें कि अल्लाह जिस वक्त चाहे इन इंसानों को ना नजर आने वाले लश्कर से हलाक कर सकता है, अल्लाह जिस वक्त चाहे हमारे गुनाह की सजा में हमें लपेट सकता है। जिस कौम ने रसूलों की परवाह नहीं की, अल्लाह के कलाम की परवाह नहीं की, तौहीद की तालीम की परवाह नहीं की, हमदर्द इंसान को कत्ल कर दिया, अल्लाह ने उस कौम की परवाह नहीं की। फ़ाइज़ा हुम खामिदून, वो बुझे के बुझे रह गए। अरबी जुबान में खामिदून जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है, इसके एक और भी वजह है। अरबी में, अरबी अदब में, जिसको आप अरबिक लिटरेचर कहते हैं, उसमें आग का कंपैरिजन जिंदगी से किया जाता है। इसलिए कि देखें, जो जिंदा इंसान होता है उसके जिस्म में हरारत होती है, आपका एक बॉडी टेम्परेचर होता है ना, अगर वो बॉडी टेम्परेचर आपका 96-97 के दरमियान में है, इट्स योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो इंसान मर जाता है उसका जिस्म कैसा होता है? ठंडा। और जब जिस्म ठंडा होता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, तो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो जाती है। जिंदगी की अलामत है हरारत। अरबी में कहते हैं वमल मरउ इल्ला का शिहाब, इंसान कुछ नहीं है मगर शोले की तरह का है। जब तक जिंदगी है आपके अंदर, अल्लाह ताला ने उसके अंदर हरारत रखी हुई है। तो कुरान ने भी यही अरब का उसलूब इस्तेमाल किया और ये कहा कि अभी तुम्हारी जिंदगी में हरारत है ऐ सुनने वालों, अभी तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है ऐ सुनने वालों, एक वक्त आएगा कि ये आग बुझ जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस जिंदगी के खत्म होने से पहले से अपना सामान आखरत का समेटना शुरू कर दो, और जो ना समेटे, आयत नंबर 30 में उसको वार्न कर दिया गया। या हसरतन अलल इबाद, क्या हसरत है, क्या अफसोस है इंसानों के ऊपर, अब इबाद के ऊपर, अल्लाह के बंदों के ऊपर। मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजीऊन, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी रसूल उन पर आया हो मगर उन्होंने सिर्फ उनका मजाक ही उड़ाया हो। यस्तहजीऊन, मजाक उड़ाया गया हो, यानी उन्होंने बात को सीरियसली ना लिया हो। अल्लाह ने यहाँ पर लोगों पर हसरत का इजहार किया है, वो लोग जो दीन को मजाक बना लें। बास लोग होते हैं जो दीन का कंप्लीट इनकार कर देते हैं, जो दीन को क्लियर कट मानते ही नहीं है, एक वो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जो दीन को क्लियर कट इनकार नहीं करती, कैटेगोरिकली इनकार नहीं करती है, लेकिन डिलेइंग टैक्टिस करती है और शरीयत का मजाक उड़ाती है। होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों का यहाँ पर जिक्र है जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने हसरत की है। अल्लाह की नज़र में अल्लाह के दीन का वाज़े इनकार यानी काफिर, या अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना चाहे वो कोई मुसलमान ही क्यों ना करे, अल्लाह की नज़र में दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है अल्लाह की नज़र में। बिल्कुल जैसे आप यूं समझें, ये वो लोग हैं मजाक उड़ाने वाले जिन्होंने दीन को सीरियसली नहीं लिया, वही लोग हैं ना जब भी मजाक उड़ा रहे हैं। आप दो बच्चे देखते हैं, या चलें एक बच्चे को आप सोचें, एक बच्चा जिसको पता है कि कल उसका एग्जाम है, और अगर उसका ओ लेवल या ए लेवल का एग्जाम है तो वो आज कैसे पढ़ रहा होगा आपको अंदाजा है। जिसको पता है कल उसका एग्जाम है वो आज एक लम्हा जाया नहीं करता, और जिसको ये लगे पता नहीं कल है एग्जाम, पता नहीं शायद हो या ना हो, तो जैसे वो पहले पढ़ रहा था अब पता नहीं के साथ, डाउट के साथ वो उतना पढ़ेगा, वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। जो लोग दीन और शरीयत में डिले करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, वो कभी भी शरीयत को सीरियसली नहीं ले पाते। अल्लाह ताला ने उनको बेअमल लोगों के बराबर किया है। अल्लाह ने कहा जो ना माने या जो मजाक बनाए, जो मजाक बनाएगा वो तैयारी नहीं करेगा, अल्लाह की नज़र में वो दोनों के दोनों जो हैं वो बराबर हैं। और याद रखें, जो मजाक उड़ाया जाता है दीन का, दीन की गहरी भारी वजनी बातों को भी बिल्कुल डस्ट की तरह उड़ा दिया जाता है, बेवकत कर दिया जाता है। मोमिनों की, मोमिनीन की मिसाल आती है सूरह फुरकान में, जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, लम यखिर्र अलैहा सुमियानन व उमियानन, जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो वो उस पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते। अल्लाह का कलाम सुनने के बाद अमल में दौड़ने वाले जिंदा मुसलमान, अल्लाह का कलाम सुनने के बाद, दिल में उतरने के बाद उनके ऊपर अमल करने वाले मोमिनीन, बिल्कुल जैसे ये सादिक मोमिन था, इसकी तरह मोमिनीन अच्छी बात सुनते हैं तो सुनी अनसुनी नहीं करते। ये अपनी जिंदगी का उसूल बनाए, इंशाल्लाह आप कभी दीन का मजाक नहीं बनाएंगे। जब किसी बात की दीन की समझ आ जाए अब सुनी अनसुनी ना करें। और अल्लाह ने यहां पर देखें कहा है, या हसरतन अलल इबाद, या हसरतन अलल कुफार नहीं कहा, या हसरतन अलल इंसान भी नहीं कहा। किस पर हसरत कर रहा है अल्लाह? इबाद पर, अब्द पर हसरत कर रहा है। इससे क्या पता चलता है? हर इंसान, चाहे वो मजहब से कुछ भी है, हर इंसान असल में अल्लाह का अब्द बनने का पोटेंशियल रखता है। हमने बात की थी ना, हर इंसान में फितरा है, इंटरनल डिस्पोजिशन, हर इंसान के दिल में ये बात घुपी हुई है, इनग्रेन्ड है कि एक डिवाइन हस्ती है जिसने कायनात को बनाया और जो मेरी जिंदगी का चेरिशर और नरिशर है। हर इंसान जानता है।